आज है 10 दिसंबर दिन गुरुवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। हिट एंड रन मामले में सभी आरोपों से बरी हुए सलमान खान।
सलमान खान 13 साल यही सोच में रहे कि मैं निर्दोष हूँ या मैं दोषी। उनके जो 13 साल खराब हुए हैं परेशानियों से, उसका मुआवजा कौन देगा? थैंकफुली वी आर रिलीव्ड दैट ही हैज बीन फ्री फ्रॉम ऑल दोस कर्स।
तो इस घटना में घायल हुए पीड़ित के भाई ने कहा,
अपील करके भी सुनवाई नहीं होगी, क्या मतलब होगा हमको? बार बार कोर्ट जो है कागज उन लोगों को बरी कर दे रही है। वो लोग पैसे वाले कुछ भी कर सकते हैं ना। आम लोग उठ लाए है नहीं कागज, वकील करे प्राइवेट या केस लड़े।
तमिलनाडु में आई बाढ़ का क्या असर पड़ा अनाथालय पर? होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। साल 2002 के हिट एंड रन मामले में 5 साल की सजा के खिलाफ अभिनेता सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है कि सलमान खान उस दिन नशे में थे, और अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि वही गाड़ी चला रहे थे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि रवांडा नरसंहार में मुख्य भूमिका निभाने के संदेह में एक व्यक्ति को कांगो गणराज्य में गिरफ्तार किया गया है। एक पूर्व मेयर लाडिस्लास हांगाज़वा पर साल 1994 में बड़े पैमाने पर हजारों लोगों के कत्लेआम और बलात्कार के आयोजन का आरोप लगाया गया था। वे उन 9 संदिग्धों में से एक हैं जिनकी संयुक्त राष्ट्र को तलाश थी। अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है। लाडिस्लास हांगाज़वा की गिरफ्तारी पर संयुक्त राज्य अमरीका ने $50 लाख का इनाम भी रखा था। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने संकेत दिए हैं जिनसे अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके देश के पास एक हाइड्रोजन बम और एक एटम बम है। हालांकि इस खबर को अभी संदेह की नज़र से ही देखा जा रहा है, लेकिन यदि यह खबर सच हुई तो माना जाएगा कि उत्तर कोरिया ने अपनी परमाणु क्षमता को एक कदम आगे बढ़ा लिया है। प्योंगयांग के राज्य टेलीविजन ने किम जोंग उन को उनके दादा किम द्वितीय सुंग, जिन्हें आजीवन राष्ट्रपति कहा जाता है, उनको श्रद्धांजलि देने का दृश्य दिखाया था। न्यूज रीडर ने कहा, किम जोंग उन ने अपने दादा की तारीफ की और कहा, राष्ट्रपति किम द्वितीय सुंग के काम की वजह से कोरियाई गणतंत्र और शक्तिशाली परमाणु हथियारों वाला देश बन गया है, जिसके पास एटम बम और हाइड्रोजन बम है, और जिनके जरिए वह देश के प्रभुत्व और आत्मसम्मान की रक्षा कर सकता है। ये थे प्योंगयांग के राज्य टेलीविजन के न्यूज रीडर के पढ़े गए किम जोंग उन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने पेरिस में हाल ही में हुए आतंकी हमलों की जांच के सिलसिले में जिनेवा शहर और इसके चारों ओर खतरे के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। एक बयान में स्विस फेडरल पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 संदिग्धों के जिनेवा या आसपास के क्षेत्र में होने की संभावना बताई गई है। शहर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, जहाँ सशस्त्र गार्डों की उपस्थिति देखी जा सकती है। फ्रांस के साथ सटे देश की सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिडनी की चरमपंथी विरोधी पुलिस ने हमले की साजिश रचने के आरोप में 15 साल के किशोर और 20 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक छापों में जो दस्तावेज मिले हैं, उनमें सरकारी और पुलिस की इमारतों को निशाना बनाने की योजना बनाई गई थी। ये गिरफ्तारियां ऑपरेशन एप्पलबाय की कार्रवाई से जुड़ी हैं, जो सितंबर 2014 में शुरू हुआ था। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान को हिट एंड रन मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। ये मामला साल 2002 का है। अदालत ने उन्हें फैसले की प्रति थमाई और कहा कि वे दोषी नहीं हैं। आपको याद दिला दें कि 28 सितंबर साल 2002 को देर रात एक टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी ने मुंबई के बांद्रा इलाके में एक बेकरी के बाहर सो रहे लोगों को कुचल दिया था। इसके बाद ये आरोप लगे थे कि ये गाड़ी सलमान खान चला रहे थे। इस घटना में 4 लोग जख्मी हो गए थे और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। एक रिपोर्ट के साथ मुंबई से सुशांत मोहन।
13 साल तक चले मुंबई के चर्चित हिट एंड रन केस में यह साबित हो गया कि अभिनेता सलमान खान की गाड़ी से हुए हादसे के जिम्मेदार सलमान खुद नहीं थे। मई महीने में निचली अदालत से दोषी करार दिए गए सलमान खान ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती देते हुए बंबई के हाईकोर्ट में अपनी अपील दायर की थी और उच्च न्यायालय ने आज सलमान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अपने फैसले में अदालत ने जोर देते हुए कहा कि सलमान के खिलाफ जुटाए गए साक्ष्य पूरे नहीं हैं और उनके खिलाफ दिए गए गवाहों के बयानों में भी कई त्रुटियां हैं। इन सभी चीजों पर ध्यान देते हुए न्यायाधीश A.R. जोशी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे हालातों में सजा नहीं सुनाई जा सकती और इसीलिए सलमान खान के वकील अमित देसाई ने इस फैसले पर और प्रकाश डालते हुए कहा,
मैंने बताया कि प्रोफेशनली सेटिस्फाइंग है, सभी इश्यूज हमने जो कैनवास किए थे उनके ऊपर बोर्ड ने डिसीजन दे दिया है, ये हेल्ड इन फेवर ऑफ सलमान ऑन ऑल द इश्यूज। पुलिस को पता था 2002 में कि ड्राइवर ड्राइव कर रहे थे, उसके कुछ इश्यूज एक्सेप्ट किए हैं, कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन है वो इशू मुद्दे पर सफिशियंट एविडेंस नहीं दिया है सलमान खान ड्राइव कर रहे थे, और सर्कमस्टेंसेस है जिसमें पता चलता है कि शायद कोई दूसरा ड्राइव कर रहा है।
सलमान खान के निर्दोष होने का फैसला सुनकर उनके फैंस के अलावा उनके कुछ सहयोगियों ने भी अपनी खुशी BBC से साझा की। निर्माता निर्देशक सुभाष घई का कहना था,
हमें बहुत दुख है इस बात का कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कुछ लोगों की मौत हुई, बहुत दुर्घटना हुई, उसका दुख सलमान को, परिवार को और फिल्म इंडस्ट्री को था, लेकिन उसके बाद ज्यादा दुख ये हुआ कि उसके उस दुर्घटना को केस बनाते बनाते 13 साल लग गए उसका फैसला करते करते। सलमान खान 13 साल यही सोच में रहे कि मैं निर्दोष हूँ या मैं दोषी। उनके जो 13 साल खराब हुए हैं इस परेशानियों से, उसका मुआवजा कौन देगा? थैंकफुली वी आर रिलीव्ड दैट ही हैज बीन फ्री फ्रॉम ऑल दोस कर्स।
वहीं सलमान और उनके पिता सलीम खान के करीबी माने जाने वाले अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने कहा,
भाई बहुत खुशी की बात है, तो ये हमारी न सिर्फ उनके कुनबे के लिए बल्कि तमाम इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशी की बात है। फिर वो एक सुपरस्टार है जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वैसे भी उनका जो रवैया है बहुत ही अच्छा है लोगों की तरफ, वेरी हेल्पफुल टू द पुअर पीपल। उसने बहुत ही बेचारे ने वो सफर किया है 13 साल तक। इन स्पाइट ऑफ दैट आई गिव क्रेडिट टू हिम दैट ही इज नॉट लेफ्ट द एक्टिविटीज, फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज प्लस द पिक्चर्स, जो फिल्में जो उसने बनाई वो सुपर डुपर हिट हुई, वो अपने 100% देता है, जो भी काम करता है 100% देता है, बिग बॉस में जाता है, ये जाता है, और कोई आदमी तो डिप्रेशन में चला जाए, लेकिन उसने बड़ी बहादुरी से बहुत ही इंटेलिजेंटली इस चीज को फेस किया एंड अल्टीमेटली जस्टिस हैज बीन डन एंड वी ऑल हैव फेथ इन द जुडिशरी।
सलमान के बॉलीवुड सहयोगियों में से कईयों ने सोशल मीडिया पर भी सलमान के बरी हो जाने पर अपनी खुशी जाहिर की, जिसमें गायक मीका, अदनान सामी के साथ साथ अभिनेता अरमान कोहली का नाम भी शामिल है। वहीं सलमान को समर्पित मुंबई के एक रेस्तरां भाईजान ने अदालत के इस फैसले पर अपने यहां खाने पर छूट दे दी। रेस्तरां के मालिक राहुल कानन ने बताया,
ये जो भाईजान रेस्टोरेंट है ये हम जैसे फैंस के तरफ से ही उनको एक डेडिकेशन, एक ट्रिब्यूट था, लेकिन आज के लिए हमने जो इस हर फैंस के लिए एक ऑफर रखा है, क्या जो भी फैन, जो भी कस्टमर भाईजान में आ जाए, वो जो भी खाना खाए उस पे अपना बिल खुद बनाए। अगर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने 1000 रुपए का बिल बनाया और वो सोचते हैं कि मुझे 1 रुपया भरना है या 10 रुपया भरना है या 200 रुपया भरना है, तो जो उन्हें भरना है वो भर के जा सकते हैं।
वैसे इस मुकदमे का फैसला आज सुबह ही आ जाता, लेकिन सलमान खान अदालत में मौजूद नहीं थे, और फिर जब दोपहर 1:30 पर अदालत के बुलावे पर सलमान अदालत में पहुंचे तो उन्हें अविलंब फैसला सुना दिया गया। इस फैसले के बाद जहां अदालत में मौजूद सलमान के परिवार और करीबी दोस्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई, वहीं अपने परिवारजनों से घिरे सलमान की आंखें जरा भीगी हुई थी। अदालत के बाहर उन्हें देखने के लिए आए फैंस की अच्छी खासी तादाद थी, लेकिन सलमान परिवार से घिरे रहे और फिर गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए, लेकिन इस बार निर्दोष। सुप्रिया सोगले के साथ सुशांत मोहन, BBC मुंबई।
हिट एंड रन घटना में कलीम भी घायल हुए थे। कलीम के भाई हलीम ने BBC को बताया कि वे इस फैसले से काफ़ी दुखी हैं, लेकिन गरीब होने के कारण इस फैसले के खिलाफ गुहार नहीं लगा सकते। हमारे सहयोगी रोहित जोशी ने कलीम के भाई हलीम से बात की।
अब फैसला हाई कोर्ट दे या सुप्रीम कोर्ट दे, उससे हमें लाभ कुछ थोड़ी है भैया। हम कह रहे थे कि हम लोग गरीब आदमी है, चोट खा गए थे, यहाँ पर तरह तरह परेशानियां है, उसमें हम लोग को कुछ मुआवजा मिल जाए तो हमको उसमें लाभ था। अब उनको अगर सजा हो जाए, कुछ भी हो जाए, छोड़ दिया जाए, उससे हमें लाभ थोड़ी है कुछ।
इस हादसे में आपके भाई को चोट आई थी
जी? अब वो हाथ पाँव से मजबूर हो गए हैं, कमर में दर्द रहती है, काम वो तो करते नहीं, तब लोग हमें लोग का गरीब परिवार के उनके परिवार को देखना, अपने परिवार को देखना, माँ बाप को देखना, उनके तब कुछ होता नहीं है।
तो क्या अब इस मामले में आप लोग आगे की अदालत में अपील करेंगे, ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं?
अपील करेंगे, हाई कोर्ट से बरी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी बरी कर देगा उसका, गरीब आदमी को कोई सुनवाई थोड़ी है साहब।
तो अब आप क्या अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में?
हम कह रहे हैं अपील करके भी सुनवाई नहीं होगी, क्या मतलब होगा हमको? बार बार कोर्ट जो है कागज उन लोगों को बरी कर दे रही है, वो लोग पैसे वाले कुछ भी कर सकते हैं ना, आम लोग उठ लायक है नहीं कागज वकील करे प्राइवेट या केस लड़े, हमारे पास उतना पैसा तो है नहीं। अब वो लोग है खरीद कोई भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसको तो कोई वो है नहीं, सुनवाई नहीं है सर बस।
तो क्या उस दिन हादसे के दिन क्या आप भी वहाँ पर थे?
हाँ हम थे, काम तो हम लोग भी करते थे ना, हमारे बड़े भाई भी करते थे, हम भी करते थे काम हुए ना, ऐसा ही निकल के भाग भी नहीं पाए ना, गाड़ी में फंस गए थे थोड़ा टाइम तक का, गाड़ी फंसी थी ना, पहले आगे पीछे कर रहे थे काफी टाइम गुजर गया, बाद में उतर के जब पब्लिक देखे हम लोग पड़े वहाँ पे, फिर उन्होंने निकल के भागा ड्राइवर की सीट से।
तो आपके परिवार की आपके भाई की जिंदगी कैसे बदली है उस दिन के हादसे के बाद?
अरे बहुत दिक्कत हो गया, तरह तरह की परेशानियां, क्योंकि वो बड़े भाई थे आराम से खाली कमाने वाले, वो जब बेकार हो गए उनके इलाज के लिए कमाए कि घर परिवार के लिए चलाए, रिश्तेदारों से इनसे उनसे कर्जा लेकर के किसी तरीके से कागजी जो है भाई का इलाज कराए, उसके बाद जो है किसी तरीके से परिवार चलाए, तरह तरह की परेशानियां आई, लेकिन अब क्या करें।
आपके भाई साहब जो है वो क्या काम कर सकने लायक है अभी उसके बाद?
बाद में गए थे इलाज होने के बाद, दो साल बाद गए वहाँ काम किए, उनके पैर में सूजन आ गई, कमर में दर्द आ गया, फिर इलाज शुरू हो गया, तो जितना काम में करते उससे ज्यादा इलाज में लग जाता है, इसकी वजह से घर पे रहते हैं सर, जा नहीं पाते कहीं।
तो अभी आपका परिवार कहाँ रहता है?
हम रहते हैं सुल्तानपुर में सर, हम फिर ड्राइवरी करने लगे वहाँ पे छोड़ करके।
तो आप मुंबई छोड़कर अब सुल्तानपुर आकर बस गए हैं?
जी सर, यहीं गाड़ी चलाते हैं सर। सुल्तानपुर के हम निवासी थे ना पहले से ही, हम लोग खाली कमाने के लिए उधर गए थे, पर बहुत परेशानियाँ थी घर पे, इसलिए सोचा चलो परदेश निकल रहे कमाए थोड़ा, उसके बाद वहाँ गए तो काफी दिन काम किए, पाँच छह साल के बाद वो हादसा हो गया, जितना कमाए उससे दो गुना इलाज में लगा दिए, अम्मा अपना कर दी भैया वहाँ मत जाओ, ऐसे से बात हो गई है, यही रहो ज्यादा ठीक है।
तो अभी आप आगे अदालत में इसको दोबारा से सुनवाई की नहीं सोच रहे हैं कि आप अपील करेंगे?
हम अपील ये बहुत कुछ सोचेंगे, लेकिन सर कागजी जो हमें कुछ उसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो क्या मतलब है, अभी जैसे लोअर कोर्ट में चल रहा था वो भी बरी किया, हाई कोर्ट पहुंच गई, हाई कोर्ट पहुंचा वो भी बरी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट चल पहुंचे वो भी बरी कर देगी, क्या मतलब निकले, गरीब तो थोड़ी कोई सुन रहा है, तो बड़े आदमियों को सुनते हैं, कोर्ट भी सुन रही है और गवर्नमेंट भी सुन रही है कोर्ट का। अब लोग बागे कहते हैं कि सलमान खान बहुत दान करता है, बहुत ये करता है वो करता है, 4-6 लाख गरीबों आदमियों दे दिए होते हैं उसमें, तो हम तो जानते बहुत दान कर रहे हैं, इसमें चोट हो गई, काम नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं, उनका परिवार मुश्किल से चल रहा है, तरह तरह की परेशानियां हैं, ऐसा तो कुछ नहीं किए।
तो इस घटना में घायल हुए कलीम के भाई हलीम बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से खासे नाराज़ हैं, लेकिन उनका कहना है कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन बॉलीवुड की नगरी में सलमान खान के कुछ फैन कोर्ट के बाहर अपने अभिनेता की एक झलक पाने के लिए पहुंचे, तो कुछ को फैसले का इंतज़ार था। तो फैसले के बाद लोगों का क्या कहना था, यही जानने के लिए हमारी सहयोगी सुप्रिया सोगले निकली सड़कों पर, आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना था।
आधे घंटे से अभी भी आया हूँ, मैं हीरो के देखने खड़ा हूँ, सलमान खान का फ्रेंड हूँ, हाँ गाना आना सब कुछ गाएंगे,
मेरा खुशी नहीं होगा, ये वो सबको पता है जो इंसिडेंट हुआ तो उसको साझा तो मिलना ही चाहिए।
अभी बयान नहीं कर सकते, लेकिन है
ज्यादा खुशी है,
मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि वो रिहा हो गए हैं, उन्होंने बेकसूर फुटपाथ पे सोए वाले लोगों को मारा था ड्रिंक एंड ड्राइव करके, वो कितने भी बड़े सेलिब्रिटी हो, जो कानून है हमारे देश का वो सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या चाहे वो कॉमन मैन हो।
मेरे को बहुत खुशी है सलमान खान जी साहब बाहर आ रहे हैं, बहुत अच्छा बात है।
बेकसूर तो नहीं है, पर उसके लिए जो जज ने दिया फैसला बराबर ठीक है, वो बोले कि पहला टायर फट गया उसके बाद एक्सीडेंट हुआ टायर फटने के बाद।
इंडिया की कानून को सेलिब्रिटी हो या बड़ा आदमी गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, पर खुशी है कि सलमान खान रिहा हो गए, और बिंग ह्यूमन के जैसे एनजीओ चलाने वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, खुशी है इस बात।
तो हिट एंड रन मामले में कोर्ट के फैसले पर लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं, लोगों से बात करी थी मुंबई से सुप्रिया सोगले। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में 2012 में गैंगरेप मामले में गिरफ्तार सभी 3 अभियुक्तों को सेशन कोर्ट की ओर से दोषी करार दिया गया है, उनकी सजा का ऐलान कल होगा। मामले के 2 मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार हैं। इसी साल मार्च में बलात्कार की शिकार महिला की मौत हो गई थी। मैंने इस बारे में जानकारी के लिए कोलकाता फोन कर बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टाशाली से बात की।
ये बहुत ही कम समय के लिए आज फैसला सुनाया गया। जज ने पहले तो सारे लोग जो इस मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उनको सबको बाहर जाने के लिए कहा, और सिर्फ विक्टिम और जो एक्यूज्ड है इनके परिवार वाले, इनके लॉयर्स, इनको अंदर रहने का परमिशन दिया। और बाद में बहुत ही छोटा सा पोर्शन जिसको कहते हैं ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट, ये पढ़ के उन्होंने सुनाया, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि तीन जो जिनका गिरफ्तारी हो चुके हैं जेल कस्टडी में है, सुमित बजाज, रुमन खान और नासिर खान, ये तीनों को इन्होंने दोषी ठहराया, और कल जो आपने भी कहा कि कल इनका साजा सुनाया जाएगा।
जी, जिनका बलात्कार हुआ था वो तो अब जीवित नहीं रही, लेकिन अब जिस तरह से तीनों को दोषी करार दिया है अदालत ने, उनके परिवार वालों का क्या कहना था?
आज उनके परिवार के सदस्य अदालत में हाजिर थे, उनके जो ग्रैंड मदर और उनके पिताजी, बहन, सारे लोग आए हुए थे, और ये जजमेंट सुनने के बाद उनका फैमिली का यही रिएक्शन है कि जैसे कि उनका नानी ये बोल रही थी कि सुजेट जॉर्डन के साथ ये हादसा होने के बाद से वो आज तक कोई भी फेस्टिवल, न्यू ईयर हो या क्रिसमस हो, कुछ भी मना नहीं पाती है, हर वक्त उनका याद रहता है, और खासकर जब सुजेट जॉर्डन का देहांत हो गया है इस साल 13 मार्च को, तब से उनको और भी बहुत दुख लगता है, उनकी यादों में रहते हैं, क्योंकि सुजेट उनकी सबसे बड़ी ग्रैंड चाइल्ड हुआ करती थी, और सुजेट की पिता पीटर जॉर्डन ने कहा है कि सुजेट तो चल बसी, उसके लिए वो कुछ कर नहीं पाती, अगर सुजेट जीवित होती तो बहुत ही खुश होते आज के दिन, क्योंकि इसी दिन के इंतज़ार वो करती थी पिछले चार सालों से, लगभग चार सालों से वो इसी दिन का इंतज़ार करती थी। और ये भी बात हम बता दें कि सुजेट जॉर्डन का देहांत हुआ है 13 मार्च को, पर उसके पहले ही ये जो पूरी एविडेंस है और जो विटनेसेस का एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह, ये खत्म हो चुका था। अगर ये खत्म नहीं हुआ होता तब ये मामले कन्विक्शन या वार्डिक्ट सुनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता।
जो पीड़िता है उनके परिवार वालों ने तो खुशी जाहिर की है, लेकिन आपको याद ही होगा कि जब ये घटना सामने आई थी उसके बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक विवादास्पद बयान दिया था, तो अब किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है?
देखिए, ममता बनर्जी ने ये घटना सामने आने के बाद ही ये इसको सजावटी घटना करार दिया था। हालांकि आज वो जब दिल्ली से कोलकाता लौट रही थी तो वहाँ एक टिप्पणी करते हुए उन्होंने इस जजमेंट को वेलकम किए है। ये भी बता दें हम अपने श्रोताओं को कि 5 फरवरी 2012 को ये घटना हुई थी मध्य कलकत्ता के पार्क स्ट्रीट इलाके का एक नाइट क्लब से, जब सुजेट जॉर्डन निकल रही थी तो उसी दौरान ये 5 जो लोग हैं ये उनको लिफ्ट देने के नाम पर उनको गाड़ी में बैठा लिए, और अगले कई घंटों तक वो चलती गाड़ी में ही इनका बलात्कार करता रहा, और आखिर में सुबह करीब 5:30 बजे उनको चलती हुई गाड़ी से ही धकेल कर फेंक दिया। शुरुआत में पुलिस तो इनका कंप्लेन लेना ही नहीं चाह रही थी, पर जब मीडिया में ये बात सामने आया तो तब उसके बाद इंक्वायरी चालू हुआ, और ये भी है कि जिसके ऊपर इंक्वायरी की पहली जिम्मेदारी दी गई थी तो उन्होंने जब कह दिया कि रेप हुई है तो ममता बनर्जी उस महिला आईपीएस ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया काफी दूर दराज के इलाके में।
ये थे कोलकाता से अमिताभ भट्टासाली। और अब बात तमिलनाडु की। चेन्नई में आई बाढ़ के दौरान अनाथालय के बच्चे 4 दिन तक गंजी या ऐसे दलिया के सहारे रहे जिसमें पानी ज़्यादा और अनाज कम था। ये अनाथालय 2 मंजिला है और यहाँ 12 फीट तक पानी भर गया था। ये अनाथालय 70 बच्चों, 10 विधवाओं और 20 वयस्कों का बसेरा है। इन लोगों की कहानी सुना रहे हैं चेन्नई से इमरान कुरैशी।
தண்ணி வந்து எல்லாமே அரிசிலாம் அடிச்சுன்னு போயிடுச்சு, ரூம்லாம் அசிங்கமாயிடுச்சு, நோட்டுபுக்லாம் அடிச்சு
போயிடுச்சு। ये आवाज़ें 4 साल से लेकर 11 साल के अनाथालय के बच्चों की हैं। ये बच्चे बता रहे हैं कि उनके अनाथालय में पानी भर गया था जिसके चलते उन्हें पहली मंजिल पर भागना पड़ा। बच्चे कहते हैं कि वे अपनी किताबें भी नहीं संभाल पाए क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से कमरे में भर गया था। साथ ही बच्चे कहते हैं कि पूरे 4 दिन तक उन्हें ठीक ढंग का खाना भी नहीं मिल सका।
ये
बाबा गुरुकुलम अनाथालय चमरा बाकम रिजर्वायर से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर है। चमरा बाकम वही रिजर्वायर है जहां से बिना किसी पूर्व घोषणा के पानी छोड़ा गया और पूरा चेन्नई शहर उसी पानी में डूब गया था। 10 दिन पहले जिस वक्त इस अनाथालय के बूढ़े और बच्चे सो रहे थे तो अचानक अनाथालय की इमारत में पानी भरना शुरू हो गया। हर कोई पहली मंजिल की तरफ भागा, तब तक पानी तकरीबन 12 फीट तक पहुंच गया था। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली धनलक्ष्मी बताती हैं। हम लोग तो सिर्फ एक ग्लास गंजी पर रहे थे, उसके साथ थोड़ा बहुत चावल मिलता था। पीने के लिए पानी की दिक्कत भी थी और छोटे बच्चे भूख से रोते भी थे। ये थे धनलक्ष्मी के शब्द। साई गणेशन अनाथालय की देखभाल करते हैं, वे बताते हैं।
पन्नडी वहरत के तनी वंदे छे रात्रि 10:30 इरको।
उस दिन रात को तो हम सब सो रहे थे जब पानी आ गया। हर एक बच्चे को हम और कुछ बड़े बच्चे ऊपर के कमरों की ओर ले गए। हमारा पूरा अनाज और दूध के पैकेट्स पानी में खराब हो गया। पहली मंजिल पर जो कुछ था उसी में हम बच्चों को और बुजुर्गों को गंजी यानी पानी का दालिया बनाकर दे रहे थे। बिजली नहीं थी तो किसी को फ़ोन भी कर नहीं पाए। 5 दिन बाद हमें किसी ने ब्रेड और दूध पहुंचाया। ये थे साई गणेशन के शब्द। लेकिन यहाँ श्याम नाम के इस बच्चे की तरह कुछ बच्चे मासूमी से कहते हैं।
My name is Shyam and I'm studying 9th standard. After 10:30, our guardian,
हमने तो आराम से सो गए, और क्या कर सकते थे, पानी तो यहाँ तक आ ही गया था। ये थे श्याम के शब्द। श्याम की मासूमियत से पता चलता है कि बच्चों को शायद ये पता ही नहीं चला कि उनकी जान कितने खतरे में डाली गई थी। बिना किसी घोषणा के जिस तरह अधिकारियों ने बंद से पानी छोड़ दिया था उससे इन बच्चों की जान तो वाकई खतरे में थी। चेन्नई से इमरान कुरैशी।
और अब समय है आपकी चिट्ठियों का।
आपकी राय में एक बार फिर से आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं इंदु पांडे।
नमस्कार, और मैं हूं राजेश प्रियदर्शी।
तो चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करते हैं राजेश जी।
बिल्कुल।
निखिल रंजन की दुनिया जहान की तारीफ के लिए ये हमारे श्रोता हैं रामचंद्र सुथार, कहते हैं कि भाई इनके पास शब्द नहीं है।
इन्होंने ये चिट्ठी लिखी है
जैसलमेर राजस्थान से
जी, और इनके गाँव का नाम है फलसूंड
जी,
और इन्होंने एक बार शिकायत की थी कि हम इनके गांव का नाम नहीं बताते। जी बहुत शुक्रिया सुथार साहब आपका सुनने के लिए हमारा कार्यक्रम और उसको पसंद करने के लिए।
और साथ ही रामानंद यादव गाजीपुर यूपी से, उनको भी ये दुनिया जहान बहुत अच्छा लगता है।
ये एक ऐसा कार्यक्रम है, बीबीसी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण संस्था है और हम जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं उसको लोगों तक आसान तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में आपकी चिट्ठियों से ऐसा लगता है कि हमें कुछ कामयाबी मिल रही है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है।
और अगला हमारे पास पोस्टकार्ड आया है रामानंद यादव का, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से ही। लिखते हैं कि सहवाग को हम 10 दिन तक चाव से सुनेंगे, लेकिन मेरे एक श्रोता मित्र ने 10 मिनट तक के कार्यक्रम पर आपत्ति जताई है जिससे कि ये बहुत आहत हुए हैं।
नहीं, आहत होने की कोई बात नहीं है, लोगों की अपनी पसंद है, अपने विचार हैं, और कुछ लोग कुछ चीज़ें सुनना चाहते हैं, दूसरे लोग दूसरी चीज़ें सुनना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी से हमें तो अंदाज़ा मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आप बेफिक्र रहें, हम ऐसा नहीं है कि उनकी बात बिल्कुल अभी मान लेंगे और सहवाग के बारे में कुछ नहीं सुनवाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी क्रिकेट में, खेल में और खिलाड़ियों में दिलचस्पी है, तो हम उस तरह का प्रसारण भी करते रहेंगे जैसा कि हम करते ही हैं।
आगे लिखते हैं कि अजय शर्मा की रिपोर्ट भी प्रभावित कर रही है, साथ ही बूझिए बिहार को लोकप्रिय हो रहा है। फैलाव जियारा की कुछ कड़ी तो बहुत पसंद आई है, वैसे उनका प्रयास काफ़ी सार्थक है, और जहाँ तक बात है विवेचना की तो बहुत ज़्यादा पसंद है।
जी देखिए, बिहार को बूझने में तो बहुत सारे लोगों से बहुत सारी गलतियाँ हुई, और अब परिणाम आने के बाद अब भी लोग बिहार को बूझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार काफ़ी बहुत सारे मामलों में बाकी राज्यों से काफ़ी अलग हो सकता है, ये इस बार के चुनाव परिणामों में देखने को मिला। और जो कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं उसके लिए आपका शुक्रिया।
और महाराष्ट्र से चिट्ठी आई है पद्माकर बेर्डे की, कहते हैं कि बीबीसी महाराष्ट्र के श्रोताओं के साथ पक्षपात करता है।
ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में मुंबई में हमारे रिपोर्टर हैं, पुणे से हम रिपोर्ट्स प्रसारित करते हैं। महाराष्ट्र में जब भी कोई बड़ी घटना होती है, कोई बड़ी खबर होती है, तो हमारे रिपोर्टर वहाँ जाते हैं और वहाँ से खबरें करते हैं। और अगर कोई ऐसी गुस्ताखी हमसे हुई हो जैसा आपको लगता है तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी इरादतन नहीं है। हम जहाँ कहीं बड़ी खबर होती है, चाहे वो भारत का कोई भी राज्य हो, हम वहाँ से रिपोर्टें सुनवाते ही हैं।
और ये ज़ीशान नैयर का मेल है कि भाई डाउनलोड की प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, आखिर ये समस्या कब हल होगी?
ज़ीशान साहब, ये समस्या जल्दी ही हल हो जाएगी। डाउनलोड नहीं, आप उसको डाउनलोड कह भी सकते हैं, लेकिन वो पॉडकास्ट है जिसको आप कुछ समय बाद सुन सकते हैं। और हम अपने BBC का एक नया जो ऑडियो का सिस्टम है जिसका नाम आई प्लेयर है, वो जल्दी ही आपको उपलब्ध होगा, जिसमें आपको पिछले 3 दिनों के कार्यक्रम भी सुनने को मिलेंगे। आप कुछ कार्यक्रमों को पॉडकास्ट के तौर पर आप सुन सकते हैं डाउनलोड करके। इसकी मुख्य वजह ये है, और ये सिर्फ ज़ीशान साहब के लिए नहीं, सभी श्रोताओं के लिए ये समझना ज़रूरी है कि कार्यक्रम में बहुत सारी सामग्री ऐसी होती है जिसकी कॉपीराइट के मसले और मुद्दे होते हैं। तो हम सब कुछ जिसका कॉपीराइट हमारे पास नहीं है और वो अगर कार्यक्रम का हिस्सा है, तो हम लोगों को वो डाउनलोड करने के लिए कानूनन नहीं दे सकते, ये हमारी बाध्यता है। और उसको दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकि कार्यक्रम में हम ऐसी चीज़ें शामिल करें जिनको आप डाउनलोड कर सकें, और फिर भी आप वो कार्यक्रम शायद डाउनलोड नहीं कर पाएंगे जिनके कॉपीराइट को लेकर हमारी कुछ सीमाएं होंगी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं।
राजेंद्र प्रसाद यादव नरपतगंज बिहार से पूछते हैं कि BBC के प्रोग्राम का स्केड्यूल जानने के लिए क्या करना होगा?
BBC के कार्यक्रम कुल 4 हैं और उनको आप सुनते ही हैं रेडियो पर, और अगर आप उनके प्रसारण का समय जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर कार्यक्रमों की जो समय सारणी या शेड्यूल है वो उपलब्ध है, आप आ सकते हैं। मेरे ख्याल से आज अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमें चलना चाहिए,
लेकिन पता बता दें पहले।
जी बिल्कुल, तो पता है BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल से चिट्ठी भेजना चाहें तो पता वही है, hindi.letters@bbc.co.uk। तो बस इतना ही, इंदु पांडे के साथ मुझे राजेश प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
नमस्कार। तो आपकी चिट्ठियां लेकर आए थे राजेश प्रियदर्शी और इंदु पांडे, और आप हमें यूं ही लिखते रहिए। और अब सुन लेते हैं खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। 18 दिन तक चलने वाले भारत के एक दिवसीय घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मुकाबले आज खेले गए। हर किसी की नजरें इस टूर्नामेंट में खेल रहे भारतीय वनडे और T20 टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर लगी हुई हैं। हालांकि आज पहले मुकाबले में झारखंड की कप्तानी कर रहे धोनी ने निराश किया। जम्मू कश्मीर के खिलाफ मुकाबले में वो 24 गेंद खेलकर केवल 9 रन पर आउट हो गए। इसी टूर्नामेंट में दिल्ली के लिए खेल रहे भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने बड़ौदा के खिलाफ मैच में 25 रन की पारी खेली। और वहीं पाकिस्तान के हाथों टेस्ट सीरीज गंवाने वाली इंग्लिश टीम लंबे दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना होने वाली है। इंग्लैंड को इसी दौरे पर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के अलावा 5 वनडे और 2 T20 मैचों की सीरीज भी खेलनी है। पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में 3 अर्धशतक लगाने वाले इंग्लिश मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जो रूट दक्षिण अफ्रीकी दौरे के लिए कमर कस चुके हैं। उनका कहना है कि टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ हुई गलतियों से सबक लिया है।
हमने उस सीरीज से कड़ा सबक सीखा है। हम पूरे दौरे पर अच्छा क्रिकेट खेले, हालांकि 2 टेस्ट मैचों के 2 घंटों का खेल हमें महंगा पड़ा। हमारी अनुभवहीन और युवा टीम के लिए ये अच्छा अनुभव रहा। अगली बार अगर हम उन्हीं परिस्थितियों में खेले तो ऐसा दोबारा नहीं होगा, हमें हराना मुश्किल होगा।
इंग्लिश टीम इस दौरे पर 2 अभ्यास मैच खेलेगी जिसकी शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। वहीं इस टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबलों के लिए दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम घोषित कर दी है। बल्लेबाज AB डिविलियर्स को टीम के विकेटकीपर की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। दक्षिण अफ्रीका हाल ही में भारत के हाथों 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 0-3 से हार गई थी, जिसके बाद टीम के विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक की जगह डिविलियर्स को विकेट के पीछे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब बात भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की। रोहित शर्मा के बाद टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी आज से शुरू हुए प्रो कुश्ती लीग में अपनी भागीदारी दर्ज करा दी है। विराट इस लीग की टीम बेंगलुरु योद्धास के सह मालिक बन गए हैं। इस टीम की कप्तानी विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता नरसिंह यादव कर रहे हैं। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
खेल समाचार सुना रही थी राखी शर्मा, और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। साल 2002 के हिट एंड रन मामले में 5 साल की सजा के खिलाफ अभिनेता सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि रवांडा नरसंहार के मुख्य भूमिका निभाने के संदेह में एक व्यक्ति को कांगो गणराज्य में गिरफ्तार किया गया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने संकेत दिए हैं जिनसे अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके देश के पास एक हाइड्रोजन बम और एक एटम बम है। स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने पेरिस में हाल ही में हुए एक आतंकवादी हमलों की जांच के सिलसिले में जिनेवा शहर और इसके चारों ओर खतरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी मानसी दास। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।